हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेद और शिवांशा साथ में कमरे में थे। आराध्या और नव्यांशी शिवांशा को जबरदस्ती अपने साथ स्पा लेकर गई थीं, जिसके बाद उसका लुक काफी हद तक चेंज हो गया था। शिवांशा को पहले लगा कि उसके बाहर जाने पर वेद नाराज होगा, लेकिन वेद ने उसे प्यार से समझाया कि उसे उसके बाहर जाने पर प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे लीला जैसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। शाम को वेद काफी थका हुआ और परेशान लग रहा था। ऊपर से आज जिस तरह से लीला ने नव्यांशी से मिलकर उसे एल्बम दिखाने की कोशिश की थी, उसके बाद वो परेशान भी था। उसकी परेशानी का कारण शिवांशा खुद को समझ रही थी। हमेशा की तरह शिवांशा ने यही कहा कि उसकी वजह से वेद को बेवजह मुसीबत का सामना उठाना पड़ रहा है, तो इस वजह इरिटेट होकर वेद ने भी उस पर थोड़ा चिल्ला दिया था। शिवांशा पर गुस्से में चिल्लाने के बाद वेद बाथरूम में चला गया था। वो नहीं जानता था कि उसकी एक छोटी सी डांट का उस पर ये असर होगा। जब वेद कमरे से बाहर आया तो उसने देखा शिवांशा सोफे पर बैठकर रो रही थी। वेद ने उसे देखकर सर पकड़ा और धीरे से बड़बड़ाकर कहा, जब खुद पूरे दिन खुद को मुसीबत बोलती रहती है तब कुछ नहीं, और आज मैंने इसी की बात को रिपीट कर दिया तो मैडम का मुंह बन गया। जरूरी नहीं मैं इसी की वजह से परेशान हूं, मैं इसे लेकर भी परेशान हो सकता हूं। वेद धीमे कदमों से चलकर शिवांशा के पास आया। उसने सख्त आवाज में कहा, गेट अप। शिवांशा ने हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वेद ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और उसे समझाने के लिए अपना लहजा नरम करते हुए कहा, सबसे पहले रोना बंद करो, मुझे तुम्हारे बाहर जाने और इस तरह खुलकर जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही तुम मेरे लिए किसी तरह की कोई मुसीबत हो। अगर तुम ही खुद को अंडर एस्टिमेट करोगी और भला बुरा कहोगी तो लोग तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचेंगे ना। लेकिन आज तक मैं लोगों के लिए प्रॉब्लम ही तो रही हूँ, शिवांशा ने भारी आवाज में कहा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वेद धीमे कदमों से चलकर उसके पास आया और उसके आंसू साफ करके कहा, वो सब बेवकूफ़ थे, चलो अब रोना बंद भी करो, वरना नव्यांशी और आराध्या की मेहनत पर पानी भिर जाएगा। शिवांशा को वेद की बात का मतलब समझ नहीं आया। वो उलझन भरी निगाहों से वेद की तरफ देख रही थी। रोने की वजह से आंखों में सूजन आ जाएगी और जो घंटों तुम स्पा में बिताकर आई हो वो वेस्ट हो जाएंगे। मैं रानी को बोल दूंगा कि वो तुम्हारे लिए खाना ऊपर भेज देगी, मैं नीचे जा रहा हूँ, वेद ने उसे समझाया और फिर नीचे जाने लगा। वहीं वेद के नीचे जाने पर शिवांशा के चेहरे पर फिर से मायूसी के भाव उभर आए थे। उसे यही लगा कि कल वेद उसके बीमार होने पर उसके साथ खाना खा रहा था, आज जब वो ठीक थी तो वो वापस अपने परिवार के पास चला गया, जबकि वेद के दिल में कुछ और ही था। शिवांशा को देखकर वेद के दिल में अजीब सी हलचल होने लगती थी। ऊपर से प्रतीक की बातों की वजह से उसका ध्यान बार बार उस तरफ जा रहा था कि उसे शिवांशा के साथ अपना फ्यूचर सोचना चाहिए। वेद बस कुछ भी करके शिवांशा से दूर रहना चाहता था। उसका दिल भले ही शिवांशा के करीब जाने के लिए कहे, लेकिन दिमाग इसकी गवाही नहीं देता था। वेद नीचे चला गया जबकि शिवांशा ऊपर अकेली थी। वो बुझी हुई आवाज में बोली, जब भी दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगती है कि ये मुझे पसंद करने लगे हैं, तब अगली ही पल कुछ ऐसा हो जाता है कि सच आईने की तरह सामने आ जाता है। जो भी हो, मुझे अपनी हैसियत और जगह नहीं भूलनी चाहिए। वेद एक बहुत अच्छे इंसान है और उनका लाइफ पार्टनर भी उन्हीं की तरह अच्छा और परफेक्ट होना चाहिए। मेरे जैसे लोगों के लिए उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, फिर चाहे मेरे दिल में उन्हें लेकर कुछ भी क्यों ना हो। शिवांशा अब इस बात को समझने लगी थी कि वो वेद को पसंद करने लगी है। वेद के पास रहना, उसे देखना, यहाँ तक कि उसकी प्यार भरी डांट सुनना उसे बहुत पसंद आने लगा था। पर साथ ही एक बात उसके दिल में बिल्कुल क्लियर थी, वेद उसके साथ कभी अपनी जिंदगी नहीं बिताने वाला था। एक बार के लिए भले ही दया आने पर वो उसकी जान बचा लेगा, लेकिन उसे प्यार करना या उसके साथ शादी करना उसके लिए किसी हसीन सपने के अलावा और कुछ नहीं था। कुछ ही देर में रानी उसके लिए खाना लेकर आ गई थी। खाना खाने के बाद दवाइयाँ लेकर शिवांशा जल्दी ही सो गई थी। वहीं वेद भी शिवांशा के सामने नहीं आना चाहता था, इसलिए वो कमरे में देरी से आया था। जब उसने आते ही शिवांशा को सोते हुए देखा तो उसने राहत की सांस ली। वेद शिवांशा के पास गया। सोते हुए उसका चेहरा किसी बच्चे की तरह मासूम लग रहा था। वैसे भी वो काफ़ी मासूम थी, किसी तरह का कोई छल कपट नहीं। कभी कभी मुझे खुद पर शक होने लगता है, इतने सालों का तजुर्बा होने के बावजूद मैं इंसानों को समझने में मात खा जाता हूँ। मैं तुम्हें क्यों नहीं समझ पाया? कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर उस दिन मैं वहाँ नहीं पहुँचा होता और मेरी नफरत तुम पर हावी नहीं होती तो शायद मैं तुम्हें बचाकर नहीं लेकर आता। इसी बहाने तुम राजावत फैमिली से बच गई। अब तक तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफें सही हैं। कोशिश करूंगा मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियां दे सकूं, शिवांशा, वेद ने मन ही मन कहा। उसे एहसास तक नहीं हुआ कि कब वो अपने ख्यालों में खोया हुआ शिवांशा के करीब आकर ज़मीन पर बैठ गया था। शिवांशा को प्यार से देखते हुए वेद धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था ताकि वो नींद में हमेशा की तरह डरे नहीं। काफ़ी देर तक वेद उसके पास ऐसे ही बैठे हुए उसे सहला रहा था, जबकि शिवांशा को तो कुछ एहसास भी नहीं था। रात के लगभग 12 बजे के करीब वेद शिवांशा के पास से उठकर गया और अपने बिस्तर पर जाकर सो गया था। अगला दिन उनका काफ़ी नॉर्मल बीता था। वेद काम के सिलसिले में पूरी रात ऑफिस में रुका हुआ था, जबकि शिवांशा अकेली थी। फाइनली वो दिन आ गया था जब कॉन्सर्ट होना था।
नव्यांशी को अच्छे से पता था कि वेद, वंश और अक्षत तीनों ही देर रात तक ऑफिस में रुकने वाले थे। उनका एक नया वेंचर शुरू होने वाला था जिसके चलते वो देर रात तक काम कर रहे थे। आराध्या और नव्यांशी अपने काम से जल्दी आ गई थी। लगभग 6 बजे के करीब नव्यांशी और आराध्या शिवांशा के पास एक ड्रेस लेकर पहुंची, जिसे देखते ही उसने तुरंत नामे से हिला दिया था। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं पहनने वाली हूँ। मैंने ऐसे कपड़े पहले नहीं पहने। ऊपर से उन्हें भी इस तरह के कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे। अगर उन्होंने मुझे ऐसे कपड़ों में देखा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? शिवांशा काफ़ी मासूमियत से नव्यांशी की लाई हुई ड्रेस पहनने से बार बार इनकार कर रही थी। नव्यांशी ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा और उसे प्यार से समझाते हुए कहा, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? और ऐसा भी कुछ नहीं है इस ड्रेस में। भैया हम लोगों को भी शॉर्ट ड्रेस पहनने से मना नहीं करते हैं। वैसे भी उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन मैंने ऐसे कपड़े पहले नहीं पहने हैं, शिवांशा ने फिर से मना करते हुए कहा। हर काम कभी ना कभी पहली बार किया ही जाता है, तो आप भी ट्राई कर लीजिए। हमने बहुत मन से आपके लिए ड्रेस ली है भाभी, प्लीज़ मना मत कीजिए। और वैसे भी इवेंट का ड्रेस कोड वेस्टर्न ही है, आराध्या बोली। शिवांशा का दिल अभी भी उसे ड्रेस को पहनने के लिए नहीं मान रहा था। वेद से छुपाकर कॉन्सर्ट जाने तक तो ठीक था, लेकिन इस तरह के कपड़े पहनना उसे सही नहीं लग रहे थे। शिवांशा घूरते हुए नव्यांशी और आराध्या की ड्रेस को देख रही थी। वो ब्लैक कलर की शॉर्ट बॉडी कॉन ड्रेस थी जो पूरी तरह स्लीवलेस थी। स्लीवलेस कहना भी गलत था, कंधे पर स्लीव्स की जगह पतली स्ट्रिप्स लगी हुई थी। जिस तरह से शिवांशा उस ड्रेस को देख रही थी, नव्यांशी समझ गई थी कि वो फिर से मना करने वाली है। इससे पहले कि वो उस ड्रेस को ना पहनने के लिए और बहाने बनाती, नव्यांशी ने जबरदस्ती उसे शिवांशा के हाथ में पकड़ा दिया था।
आप बस चेंज करके आ जाइए, मेकअप हम देख लेंगे। नव्यांशी ने शिवांशा का हाथ पकड़ा और उसे बाथरूम की तरफ खींचते हुए ले गई। उसने जबरदस्ती शिवांशा को बाथरूम के अंदर भेजकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। शिवांशा के जाते ही नव्यांशी और आराध्या जोर से हंस पड़ी थीं। आराध्या ने सिर हिलाकर कहा, तुम्हें नहीं लगता नवी, ये हमारी मिनीवेद भैया होती जा रही है? अब भाई के साथ रहेगी तो और क्या होगा? पहले कॉन्सर्ट के लिए मनाना, तो फिर ड्रेस पहनने के लिए। लगता है भाई अब अपनी वाइफ को अपनी जासूस के तौर पर तैयार कर रहे हैं, ताकि अगर वो ना रहें और हम उनके रूल तोड़ें भी तो ये हम पर नज़र रखें, नव्यांशी ने मुस्कुराकर कहा। वो दोनों बातें कर रही थी, इतने में शिवांशा चेंज करके आ गई थी। वो ड्रेस उसके घुटनों से काफ़ी ऊपर था। शिवांशा बार बार उसे खींचते हुए नीचे करने की कोशिश कर रही थी। इतनी टाइट ड्रेस में उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल भी लग रहा था, क्योंकि उसका फिगर बिल्कुल अच्छे से उभर कर आ रहा था। ये बात अलग थी कि शिवांशा खुद नहीं जानती थी कि वो उस ड्रेस में कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। शिवांशा को उस ड्रेस में देखकर नव्यांशी और आराध्या मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थीं। मैंने कहा था ना, ये ड्रेस इनके ऊपर बिल्कुल सही जाएगा, नव्यांशी ने धीमी आवाज़ में आराध्या से कहा। हमारी फ्यूचर ड्रेस डिज़ाइनर को इतना नॉलेज होना ज़रूरी है। खैर, पहले हमें इन्हें समझाना होगा कि इन्हें इस तरह ड्रेस को खींचना नहीं चाहिए, आराध्या ने जवाब दिया। वो शिवांशा के पास गई और उसे समझाते हुए बोली, भाभी आप जानती हैं कि आप इस ड्रेस में बिल्कुल किसी मॉडल की तरह खूबसूरत लग रही हैं, एकदम परफेक्ट। लेकिन इस तरह से बार बार खींचना बंद कीजिए, आपको इसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करना चाहिए, बोलते हुए आराध्या ने शिवांशा को आईने के सामने कर दिया था। शिवांशा खुद को नज़र उठाकर देख तक नहीं पा रही थी। हाँ, बस उसने अपनी ड्रेस को खींचना बंद कर दिया था। खुद तैयार होने से पहले नव्यांशी और आराध्या शिवांशा को तैयार कर रही थी। उन्होंने उसके बाद मिनिमल सा मेकअप किया था। एसेसरी के नाम पर उसने ब्रेसलेट और छोटे इयररिंग्स पहने हुए थे, उस ड्रेस के साथ मैच करते हुए। नव्यांशी ने शिवांशा के बाल कर्ली करके सेट कर दिए थे। शिवांशा को तैयार करते हुए उसकी नज़र शिवांशा के गले में पहनी चेन की तरफ गई, जो उस ड्रेस के साथ जच नहीं रहा था। नव्यांशी ने उसे निकालने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि शिवांशा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मैं जानती हूँ यह इस पर सेट नहीं हो रहा है, पर मुझे नहीं निकालना है, शिवांशा ने धीमी आवाज़ में कहा। जानकर अच्छा लगा कि वेद भैया की तरह ये आपके लिए भी कीमती है और कोई भी फैशन स्टेटमेंट इसको आपसे अलग नहीं कर सकता है। डोंट वरी, अच्छा लग रहा है, नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, नव्यांशी ने छोटी सी मुस्कराहट के साथ कहा। शिवांशा को तैयार करने के बाद आराध्या और नव्यांशी तैयार हुई थीं। आराध्या ने वाइट कलर का गाउन पहना था, जबकि नव्यांशी ने शिवांशा की तरह बॉटल ग्रीन कलर का शॉर्ट ड्रेस पहना था। ऑल रेडी गर्ल्स, नव्यांशी ने मुस्कुराकर पूछा। शिवांशा और आराध्या ने उसकी बात पर हामी भरी। पहले शिवांशा इन सब के लिए मना जरूर कर रही थी, लेकिन अब उसे भी मजा आ रहा था। हालांकि उसने अपने कॉलेज और स्कूल में क्लासेस बंक नहीं की थी, पर आज उसे समझ आ रहा था कि स्टूडेंट्स बंक करके या घर वालों से झूठ बोलकर पार्टी करने जाते हैं तो उन्हें कितना मजा आता होगा। कुछ ही देर में वो लोग कॉन्सर्ट के अंदर पहुंच गए थे। जैसा कि शिवांशा ने सोचा था, वहां काफ़ी भीड़भाड़ का माहौल था। सभी लड़कियों ने इस तरह के मॉडर्न शॉर्ट ड्रेस पहने हुए थे। पार्टी में ड्रिंक्स से लेकर हर एक कॉकटेल मॉकटेल अवेलेबल था। शिवांशा के लिए ये माहौल नया था, लेकिन फिर भी वो उनके साथ एंजॉय कर रही थी। नव्यांशी ने अक्षत से यही कहा था कि 10 बजे के करीब वो घर लौट आएंगी, तब तक वेद को उसे संभालना था। लेकिन रात के 12 बजने को आए थे, अब तक नव्यांशी की तरफ से अक्षत को कोई मैसेज नहीं पहुंचा था। अक्षत इस वक्त वेद के केबिन में वांश प्रतीक और वेद के साथ बैठा हुआ प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहा था। उसे बार बार फोन की तरफ देखता पाकर वेद ने सख्त निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा,
अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो एक ही बार में पूरा कर लो। आई डोंट लाइक कि इस तरह किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बीच तुम बार बार मोबाइल चेक कर रहे हो। नथिंग मच भाई, अक्षत हड़बड़ाता हुआ बोला। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि नव्यांशी घर पहुंच गई हो। अगर कुछ नहीं है तो मीटिंग पर ध्यान दो, ऑलरेडी 12 बज गए हैं और अगले 10 मिनट में घर के लिए निकलना है, वेद ने उसे डांटा। अक्षत ने वेद की बात पर हामी भरी। वेद के कहने पर उसने अपनी मोबाइल स्क्रीन बंद तो कर दी थी, लेकिन वो नोटिफिकेशन फ्लैश होने का वेट कर रहा था। वहीं नव्यांशी जिस गाड़ी में गई थी वो खराब हो गई थी, उसे सही होने में टाइम लगा था, इसलिए उसने अक्षत को मैसेज किया ताकि वो उन्हें पिक करने के लिए आ सके। जैसे ही अक्षत के मोबाइल पर नव्यांशी के मैसेज आने की नोटिफिकेशन टोन भरी, उसकी आंखों में चमक आ गई थी। वो अपना मोबाइल उठाता, उससे पहले वेद ने उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया था। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, वेद ने उसे घूरते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं भाई, अक्षत ने जल्दी से जवाब दिया। फिर ठीक है, वेद बोला और उसने अक्षत का मोबाइल उठाकर उसे चेक करने लगा था। जैसे ही उसने नव्यांशी का मैसेज खोला, वेद के चेहरे पर सख्ती के भाव उभरने लगे थे, तो वहीं अक्षत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। भाई वो मेरी कोई गलती नहीं है, अब तक वो घर अक्षत हड़बड़ाकर अपनी सफाई दे रहा था, तभी वेद ने उसकी बात बीच में काटी। वो लोग अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं और उनकी गाड़ी खराब हो गई है, उन्होंने तुम्हें पिक करने के लिए बुलाया है, वेद ने जवाब दिया। तो मैं चाहूं, अक्षत ने धीमी आवाज में पूछा। आखिर चल क्या रहा है, कोई बताएगा, वंश ने बीच में पूछा। वेद ने वंश की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, कुछ खास नहीं, नव्यांशी, आराध्या और शिवांशा एक ऐसे म्यूजिक कॉन्सर्ट में गए हैं जो कि किसी भी तरीके से सेफ नहीं है। उनके साथ ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है और ना ही कोई और हद है। अगर उन्हें किसी इवेंट में जाना था तो वो हमें बता देती, अक्षत उनके साथ चला जाता, वंश ने सिर हिलाकर कहा। मैंने बोला था भाई, लेकिन नवी दीदी किसी की सुनती ही नहीं है, अक्षत ने सफाई देने की कोशिश की। अक्षत इस वक्त यही सोच रहा था कि उन लोगों को लाने के बहाने वो जल्द से जल्द वहां से चला जाए ताकि वेद उस पर गुस्सा ना करे। अक्षत ने जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाई। वो उठकर जाने ही वाला था तभी वेद बोला, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद उन्हें पिक कर लूंगा और तुमसे तुम्हें घर जाकर निपटूंगा। वंश, ऐसा करो, फाइल्स लेकर घर चलो, वहीं पर डिस्कस करेंगे। इतना कहकर वेद ने गाड़ी की चाबियां उठाई और खुद ही उन्हें लाने के लिए चला गया था। तो वहीं वो तीनों इस बात का शुक्र मना रहे थे कि अब तक इस बात के बारे में वेद को पता नहीं है। वेद ने अक्षत के मोबाइल से रिप्लाई भी कर दिया था, इसका मतलब वो उन्हें लेने आ रहा था। सिर्फ अक्षत की ही नहीं, नव्यांशी, आराध्या और शिवांशा की भी वेद से अच्छी खासी क्लास लगने वाली थी।